ध्रुव महाराज 5 साल के बाद, 5 साल, और ध्रुव महाराज क्षत्रिय थे, क्षत्रिय कुल में जन्म हुआ था उनका, तो स्वाभाविक है कि क्षत्रियों में जो एक से क्षत्रियों में एक से ज़्यादा पत्नियाँ होती हैं, उनके पिता की 2 पत्नियाँ थी, एक सुनीति और एक सुरुचि। ध्रुव की माँ का नाम था सुनीति और उनका एक भाई था जो उसका नाम उनका एक भाई था उसका वो था सुरुचि का पुत्र उत्तम। एक बार ऐसा हुआ कि उत्तम को अपने पिता की गोद में बैठा देखकर ध्रुव महाराज की इच्छा हो गई, मैं भी अपने पिता की गोद में जाऊँ। स्वाभाविक है कि अगर एक बेटा पिताजी की गोद में है, दूसरे की भी इच्छा हो जाती है कि वो भी जाके बैठे। जैसे पिता अगर घर पे आप लोगों के घर पे भाई हो, छोटा भाई हो, बड़ा भाई हो, तो अगर भाई के लिए एक वस्तु आ जाए तो हमारी भी इच्छा थी कि मुझे भी लानी चाहिए, एक क्षण मेरे लिए भी आ जाता, क्या दिक्कत थी, तो इच्छा हो जाती है। ध्रुव महाराज अपने भाई को वहाँ पर गोद में, पिता की गोद में बैठा देख कर वो खुद भी चढ़ने का प्रयास किया, लेकिन उनकी जो माँ थी, ध्रुव की जो सौतेली माँ थी अर्थात उत्तम की जो माँ थी, उन्होंने ध्रुव को पकड़ा और नीचे पटक दिया, कहा तुम्हारी इस गोद में बैठने, इस गोद में बैठने की औकात नहीं, यू नॉट क्वालिफाइड टू सेट हियर। क्यों, उन्होंने पूछा क्यों, कि तू एक दासी पुत्र है, यद्यपि तू बेटा राजा का है लेकिन तू एक दासी पुत्र है। ऐसा कहकर उनकी माँ ने, उनकी सौतेली माँ ने ध्रुव को डांट दिया। और एक कड़वी बात है, तो ध्रुव ने कहा मुझे यहाँ पर बैठना होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तुझे भगवान नारायण को प्रसन्न करना पड़ेगा और भगवान नारायण से प्रार्थना करनी पड़ेगी कि तुझे तेरी मृत्यु हो जाए, तेरा दोबारा जन्म हो और तुझे मेरी कोख से जन्म लेना पड़े और तब तू क्वालिफाइड हो जाएगा कि तू तेरे पिता के गोद में बैठे। ध्रुव छोटा सा बालक था, 5 साल का बालक था, लेकिन क्षत्रिय था, तो उसका क्रोध जो था इतना बढ़ गया क्रोध कि वो क्रोध के मारे अपने अपने माँ के पास चला, सुनीति के पास चला गया और पूछा कि माँ ऐसा क्यों है, मैं क्यों अपने पिता उत्तान पा के बोलने क्यों नहीं बैठ सकता। माँ ने पूछा कि क्या हुआ, सारा वृत्तांत जान लेने के बाद माँ ने ये नहीं कहा चलो पुलिस स्टेशन चलते, चलो कोर्ट में केस डालते हैं, माँ ने सीधा कहा कि बेटा जो तेरी सौतेली माँ ने कहा है उस पर किसने कहा ये ध्यान मत दे, क्या कहा है इस पर ध्यान। उसने कहा कि भगवान नारायण को प्राप्त करने का उसने तुझे आदेश दिया, तो जा तुझे मेरा आशीर्वाद प्राप्त है, इसी समय नारायण को प्राप्त करने के लिए निकल जा और जो तेरी इच्छित वस्तु है उसको मांग, तुझे तेरे पिता की गोद में बैठने की इच्छा है ना, जा भगवान नारायण को प्राप्त कर और वो तुझे देंगे। तो ध्रुव ने पूछा कि माँ भगवान नारायण कहाँ मिलेंगे आप, तो उन्होंने कहा कि वन जंगल में मिलता। 5 साल का बालक ध्रुव बिना कुछ समझे, बिना कुछ जाने कि इतना विश्वास था माँ के वचनों में कि भगवान वन में मुझे निश्चित मिलेंगे। रास्ते में जा रहे थे कि वहाँ पे नारद जी आ गए। अब नारद जी आ गए तो नारद जी तो खुद अचंभित हो गए कि वाह, एक तो छोटा सा बालक ऊपर से क्षत्रिय और देवर तो देखो भाई, भगवान को प्राप्त करने के लिए निकला है, 5 साल का छोटा बालक भगवान को प्राप्त करने के लिए निकला है। तो नारद जी बोलते हैं अरे बेटा ध्रुव कहाँ जा रहा है, तो भगवान को प्राप्त करने, अच्छा क्या हो गया, मेरी सौतेली माँ ने मुझे अपने पिता के गोद में बैठने से मना कर दिया, अच्छी इतनी छोटी सी बात के लिए तो भगवान नारायण के पास जा रहा है। बोला हाँ, मेरी माँ सुमिति ने कहा है कि भगवान नारायण तुझे सब कुछ देंगे, इसलिए तूने प्राप्त करने के लिए जा मन में। अच्छा देख, तेरे अभी खेलने कूदने की उम्र, परमार्थ की बातें तू मत किया, वो जब तू बड़ा हो जाएगा, थोड़ा मैच्योर हो जाएगा, उसके बाद तेरे को इसमें वाले ट्रेनिंग दे दे, अभी ये सब करने विचार करने की आवश्यकता नहीं है। गुरु कहता है, नारद जी आपकी महिमा में भली भांति जानता हूँ, आज संसार में जितने सारे बड़े बड़े डिसाइपल्स हैं ना जो भगवान को प्राप्त किए, सब जितने सारे भगवान को प्राप्त करे लोग हैं, सब आपके डिसाइपल्स प्रहलाद जी, आप जितने बड़े बड़े लोगों का नाम लिए सब आपके डिसाइपल्स, और मेरे साथ क्यों ऐसी इस तरह से मजाक कर रहे हैं, मुझे भगवान को प्राप्त करना है। तो ध्रुव ने कहा कि नारद जी मुझे भगवान को प्राप्त करना है, तो नारद जी कहते हैं कि तुम्हारी जो समस्या है ना बेटा, तुम्हारी जो समस्या है कि तुम्हें तुम्हारे पिता के गोद में बैठने नहीं मिल रहा है, वो मैं क्षण भर में सॉल्व कर दूंगा, तो मेरे साथ चल। उत्तानपाद में इतनी क्षमता नहीं कि मेरी बात क्या हो गया कर सके, अगर मैं वहां पर चला जाऊंगा उत्तानपाद तुझे राजा पे डिक्लेयर कर देगा मेरी बात मानकर, तो चल। नारद जी आपको मुझे भगवान को प्राप्त करने का रास्ता बताना है तब तो ठीक है, नहीं तो आप जा सकते हैं। सारे लोगों को बता देते हैं, अब मेरी ऐसी परीक्षा ले रहे हैं। तब नारद जी उसकी इच्छा को, दृढ़ इच्छा को देखते हुए नारद जी कहते हैं, ठीक है बेटा जा, मेरा आशीर्वाद है तुझे, 6 महीने के अंदर भगवान श्री हरि तेरे सामने प्रकट होंगे। तुम नारद जी के चरण कमल में प्रणाम करते कहते, गुरुदेव क्या करना चाहिए, बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप कर, पहले तो इसी समय तो वृंदावन के लिए निकल जा, वहां पर वृंदावन में ब्रजमंडल में मधुवन नाम का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में तू जाकर स्नान कर वहां पे, और वहां पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करना। तो ध्रुव अपने ऐसे महापराक्रमी महाभागवत महामुनि नारद जी का आशीर्वाद प्राप्त करके ध्रुव ब्रजमंडल की तरफ चल पड़ा, और वहां पर ध्रुव ने अपनी तपस्या प्रारंभ कर दी। देखिए हमारे हृदय में भी जब भगवान को जानने की इच्छा होगी, तो जिस भगवान ने ध्रुव की सहायता की है वही भगवान हमारी भी सहायता करेंगे। कैसे? क्योंकि हम सबके हृदय में भगवान निवास करते हैं, हम सबके हृदय में भगवान निवास करते हैं, परमात्मा के रूप से भगवान श्री कृष्ण निवास करते हैं, और वे इंतजार करते रहते हैं कि कब ये जीव मेरे सम्मुख होगा, कब मेरे प्राप्ति के लिए प्रयास करेगा। ये भगवान है और ये जीव, फिलहाल हम लोग सब ऐसे हैं, भगवान से विमुख है। भगवान इंतजार करते रहते कब ये मेरे सम्मुख होगा, और हमारे हमारे अंदर जितनी भी एबिलिटीज है ना कोई भी कार्य करने की, ये मत समझे कि सचिन तेंदुलकर में और या बड़े बड़े जो जितने महारथी हैं या उनमें जो एबिलिटी है, ये एबिलिटी कौन देता है, भगवान ही देते हैं। हाँ उनका प्रारब्ध है, उनको मिलना है, लेकिन वो एबिलिटी की, आई एम द एबिलिटी मैन, ये किसी और ने नहीं कहा, ये कृष्ण ने कहा है। तो भगवान वो देते हैं, सारा कार्य जीव की सहायता करते हैं। आज हमें जो भी सक्सेस मिलता है या जो कुछ भी हमारे जीवन में जो कुछ भी घटता है वो परमात्मा सैंक्शन करते तब होता है। एक भक्ति के एडवांस स्टेज में हमें वो पता चलेगा कि हाँ वास्तव में परमात्मा सब कुछ कंट्रोल करता है।
भगवान सूर्यदम सर्वभूता नाम है, भगवान हमारे वास्तविक मित्र है। सब कुछ छोड़ के चला जाएगा लेकिन भगवान हृदय में छोड़ के नहीं चले जाएंगे। ये शरीर जब छोड़ता है जीव ना, तो पहले जीव शरीर छोड़, आत्मा शरीर से बाहर निकलता है, उसके बाद भगवान निकलता है। तो पहले जीवात्मा शरीर छोड़ता है, उसके बाद भगवान शरीर होता है। और जब दूसरे शरीर में जाता है तो भगवान पहले रहते, भगवान पहले आते फिर जीवात्मा शरीर में आता है। तो इस तरह से भगवान हमारे वास्तविक मित्र है। और जब हमारे हृदय में ये जब संसार को भोगते 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 जब हम हमारे हृदय में अगर भगवान की अगर किसी सुकृति के कारण अगर हमें साधु संग मिल जाए, भक्तों का संग मिल जाए, और हमारे किसी तरह से भगवान के गुणों को सुनने में आसक्ति हो जाए, रुचि उत्पन्न हो जाए, तब हमारा भगवान वो प्रेरित, भगवान व्यवस्था करते हैं कि यदि आपके हृदय में इच्छा, हमारे हृदय में इच्छा हो गई कि मुझे कृष्ण कौन है, इसको वाले क्या करते रहते हैं, ये सब भक्त लोग क्या करते रहते हैं, जब हरे कृष्ण जब क्या है, ये सब जब जानने की उत्सुकता होगी तो श्री कृष्ण हृदय में समझ जाएंगे। हाँ, उनको आनंद की, उनको आनंद की अनुभूति होती है। हाँ, आ गया मेरा बेटा, मेरे पास आ गया। तो वे व्यवस्था करते हैं कि किसी तरह से हम लोग भक्तों की संगति में आ जाए, व्यवस्था करते हैं। और फिर धीरे धीरे हमारी श्रद्धा को बढ़ाने के लिए वो हेल्प करते हैं, अंदर से सहायता करते हैं। बाहर से वैष्णव लोग सहायता करते हैं और अंदर से भगवान सहायता करते हैं। ये प्रोसेस है भगवान। अन्यथा अगर कोई व्यक्ति कृष्ण को प्राप्त करने का प्रयास नहीं करता और साधारण तुच्छ संसार के तुच्छ भोगों में लिप्त रहता है, उसकी भी भगवान सहायता करते हैं। उसको सांसारिक सारे भोग मिले इसके लिए भगवान ही तो देते हैं सब कुछ। अगर परमात्मा नहीं चाहेंगे तो पत्ता भी नहीं हिलेगा। तो ध्रुव महाराज वहां पर मधुवन में जाकर 6 महीने के लिए वहां पर लग गए भगवान को प्राप्त करने के लिए। कैसा था ध्रुव महाराज, कैसे खड़े थे? अंगूठे के बल पर खड़े थे, अंगूठे के बल पर। और शुरुआत में तो उन्होंने फल खाकर शुरुआत की, फिर धीरे हर किसी महीने में से उन्होंने घास फूस खाना चालू किया। धीरे धीरे करके घास फूस छोड़ दिया, सिर्फ पानी में रहने लग गए। उसके बाद पानी छोड़ दिया, सिर्फ सांस लेने लग गए। फिर 6वें महीने में उन्होंने सांस ही बंद कर दी। कैसा मनुष्य की आयु जो है ना, वो सांस पर निर्भर करती है। आपने सुना होगा योगी लोग जो है वो काफी, कुछ योगी है जो बहुत वर्षों तक जीते हैं। कैसे जीते हैं उन लोग? अपने सांस ही कम लेते हैं उन लोग। जैसे हमारी आयु, अगर हमारी आयु निर्धारित है कि हम 60 साल जिएंगे, तो वो सांस पर निर्भर करता है कि हम लोग कितने प्राणवायु लेते हैं। तो योगी लोग क्या करते हैं, जो बड़े बड़े योगी रहते हैं, वे लोग अपनी सिद्धियों के माध्यम से अपने सांस लेने की, बहुत 2-4 दिन में एक बार सांस लेते होंगे, उससे जीते होंगे। इस तरह से लोग अपनी आयु को बढ़ाते हैं। ये मजाक की बात नहीं, वास्तविकता है ये। तो ध्रुव महाराज ने अपनी सांस ही बंद कर दी। तो ध्रुव महाराज ने अपनी सांस बंद कर दी तो सारे ब्रह्मांड की सांस बंद हो गई। क्यों? क्योंकि भगवान उनके हृदय में निवास करते हैं, और उन्होंने सांस बंद कर दी तो सब जगह ब्लैकआउट हो गया, एकदम ब्लैक एयर, नहीं नो एयर। तो सारे जो देवता लोग हैं वो भगवान के पास चले, ब्रह्मा जी के पास चले गए। ब्रह्मा जी फिर भगवान विष्णु के पास चले गए कि क्या हो रहा है सर, ऐसी सिचुएशन तो कभी नहीं आई, किस वजह से ऐसा हो रहा है, किस असुर ने अटैक कर दिया भाई? वायुदेव को पूछा, भाई तुमने बटन बंद कर दिया क्या? तो बोले मेरे बस की बात नहीं है। तो भगवान ने उनसे कहा कि ये जो कुछ हो रहा है मेरे परम प्रेमी भक्त ध्रुव की वजह से हो रहा है, और मैं कुछ ही समय में जाकर ध्रुव को दर्शन दूंगा। अब यहां पर क्या हुआ कि उत्तानपाद जो थे वो बड़े चिंतित हो गए थे। तो नारद जी ने ध्रुव महाराज को बोले कि तुम जाओ, और नारद जी चले गए उत्तानपाद के पास। और सब कुछ जानते हुए भी नारद जी कुछ नहीं बोल रहे, कैसे उत्तानपाद जी, आप कैसे हैं, ठीक है, इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट है आप, सारे विश्व आपके अंडर में है, लेकिन आप इतने उदास क्यों बैठे हुए हैं? अब नारद जी भी ऐसे है ना, तो उत्तानपाद जी कहते हैं कि क्या कहूँ, स्त्री के अधीन होकर मैंने अपने 5 साल के बेटे को घर से निकाल दिया। तो उसी का दुख है मुझे, और पता नहीं बेचारा क्या खाता होगा, कहाँ खाता होगा, कहाँ सोता होगा, और जंगल में असुर, इतने सारे भयानक पशु पक्षी जानवर होते हैं, बेचारा कैसा जीता होगा, यहाँ पर इतने डरलॉप के करलॉप के अच्छे अच्छे बेड पे सोता था यहाँ पे, और वहाँ पर बेचारे घास फूस में सोना पड़ता होगा। तो नारद जी बोले चिंता मत कीजिए, वो भगवान श्री हरि को प्राप्त करने के लिए गया है, तो भगवान श्री हरि उसका ध्यान रखेंगे पूरी तरह से। तो आपको पता है, आपको पता है वो कहाँ गया है? बोला जी मेरा डिसाइबल बन गया है अभी, तो 6 महीने के अंदर वो भगवान को प्राप्त करके आपके पास लौट आएगा। 6 महीने के अंदर? बोला जी एकदम 6 महीने के अंदर वो लौट पड़ेगा। उसके बाद भगवान जाते हैं, भगवान जब ध्रुव महाराज तपस्या करते रहते हैं उससे, उसके बाद नारद जी जाते हैं वैकुंठ लोक में और भगवान को पूछते हैं क्या चल रहा है। मेरा डिसाइपल तपस्या कर रहा है, टाइम हो गया है, आप कृपया करके जाइए और दर्शन दीजिए। तो किसकी बात कर रहे हैं नारद? ये आचार्य के टीका में ऐसा लिखा गया है कि ये भागवत में तो मूल ऐसा नहीं है, लेकिन नीचे आचार्य के टीका है, उन विश्वनाथ गिरी ठाकुर अन्य आचार्य के टीकाओं में इस तरह से प्रसंग लिखे गए हैं। तो किसकी बात करें नारद? ध्रुव, उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव, उसको मैंने, उन्हें, उसे मैंने आशीर्वाद दिया है 6 महीने के अंदर आप प्रकट हो जाएंगे, तो जाइए टाइम हो गया। तो एक तरफ तो ये देवता लोग परेशान थे और भगवान भी वेट कर रहे थे कब नारद आएगा। तो नारद जी आ गए और भगवान ने नारद जी की बात मानकर उत्तानपाद को दर्शन देने के लिए चले गए, ध्रुव महाराज को दर्शन देने के लिए चले गए। और ध्रुव महाराज समाधि की अवस्था में थे। जब हम लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस के एडवांस स्टेज में चले जाएंगे ना, तो भगवान हमारे हृदय में प्रकट आएंगे हमेशा, हम उनके दर्शन कर पाएंगे। जिस जो हम लोग अर्चा वगैरह को मंदिर में देखते हैं, जो भगवान को देखते हैं, वही श्री भगवान राधारानी के साथ हमारे हृदय में दिखेंगे। और ध्रुव महाराज भगवान श्री कृष्ण की उस छवि पर ध्यान दे, ध्यान केंद्रित करके वो रखे थे। अरे भगवान जिसके सामने आ जाए उसको और देखने की क्या इच्छा है? जिसके सामने समस्त संसार के समस्त ऐश्वर्य रख दिया जाए, सुख रख दिया जाए, तो उसको कुछ वो झुकट पट्टी की भोगों के पास नहीं जाएगा। वो जिसके पास अच्छे अच्छे पकवान दिया जाएगा वड़ा पाव क्यों खाएगा? तो ध्रुव महाराज के सामने, यदि ध्रुव महाराज के सामने ऐसी छवि थी भक्त श्री भगवान की, तो एक टक उन लोग समाधि में रहते, भगवान के चरण कमलों को ध्यान में ध्यान से देख रहे थे और एक क्षण के लिए भी छोड़ नहीं रहे थे। तो भगवान उनके सामने प्रकट हो चुके हैं लेकिन ध्रुव महाराज आंखें नहीं खुल रहा है। तो भगवान विचार करें कि आप करो क्या। तो भगवान ने क्या किया, अपनी जो अंदर ध्रुव महाराज के हृदय में जो छवि थी उसको उन्होंने अंतर्धान कर दिया, और जैसे ही उनके हृदय का जो स्वरूप अप्रकट हो गया तो ध्रुव महाराज की आंखें खुल गई। ध्रुव महाराज खड़े हो गए, कहाँ चले गए? और जब आंखें खुली तो साक्षात भगवान श्रीहरि सामने थे। और भगवान श्री हरि को देख कर ध्रुव महाराज दंडवत प्रणाम करते हैं और अपने आप को कोसते रहते हैं कि ध्रुव महाराज जब घर से निकले थे तो ये बोलकर निकले थे कि मुझे ऐसा पद चाहिए कि जो मेरे पिता के पास नहीं है, जो मेरे पिता के पास नहीं है, और पिता महाब्रह्मा के पास भी नहीं है। मुझे ऐसा पद चाहिए, मेरी सौतेली माँ मुझे उस वहां से मेरे पिता के गोद में बैठने देती है ना, अब मुझे वहां पर बैठना ही नहीं है। मुझे ऐसा पोस्ट चाहिए जो ब्रह्मा जी के पास भी नहीं है। और ध्रुव महाराज उस पद को प्राप्त करने के लिए घर से निकले थे। और यहां पर उन्होंने जब भगवान के दर्शन कर लिए तब अपने आप को कोसना चालू कर दिए कि हाय मैं क्या कर रहा था मैं, अरे भगवान हीरे जैसे, भगवान हीरे है और मैं कांच के टुकड़े मांग रहा था। भगवान साक्षात डायमंड है और मैं, और उनके क्या मांग रहा था मैं, तुच्छ भोग, संसार के तुच्छ भोग जो कांच के टुकड़ों के समान है, वो मांग रहा था। तो ध्रुव महाराज बोलना बहुत कुछ चाहते थे लेकिन बोल नहीं पा रहे थे, 5 साल के बालक थे, स्कूल गए नहीं थे, संस्कृत आता नहीं था, तो जो कुछ कुछ पता नहीं था भगवान की स्तुति कैसे करनी है। तो भगवान समझ गए कि ध्रुव मेरी स्तुति करना चाहता है। देखिए कोई एक एक बड़ी व्यक्ति अगर आपको दिखे, आपके अगर आप उनसे इंटरेक्ट करें, तो स्वाभाविक रूप से आप उस व्यक्ति के बारे में आप लोगों को बताना चाहेंगे कि ये ऐसा है, वो ऐसा है, ऐसा है। तो भगवान सामने प्रकट हो चुके थे और ध्रुव महाराज को स्तुति करनी थी उनकी, उनके गुरुओं को गाना था, लेकिन उन्हें पता नहीं था कुछ, तो वो हड़बड़ा रहे थे कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो भगवान समझ गए, तो भगवान ने अपना शंख ध्रुव के गाल पर लगा दिया, और जैसे ही ध्रुव के गाल पर लगा दिया, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, सारे शास्त्र ध्रुव महाराज के हृदय में प्रकट हो गए, उसके हृदय में सारा जो दिव्य ज्ञान है भगवत संबंधी वो उनको प्राप्त हो गया। तो हम भी यदि भगवान को प्राप्त करना चाहेंगे, मतलब भगवान की प्राप्ति की लालसा रहेगी हृदय में, तो श्री भगवान हमारे हृदय से हमें मार्गदर्शन करेंगे और हमें समझ देंगे। समझ क्या, कि उनको समझने की समझ देंगे कैसे, क्योंकि भगवान को तो भगवान ने अपना कॉपीराइट बना लिया है कि भैया आई एम नॉट अवेलेबल टू एवरीवन एंड एवरीबॉडी। वो जिनको चाहेंगे उन्हीं को बताएंगे कि भैया हाँ ठीक है, या फिर उनके जो प्रेमी भक्तों का आश्रय ग्रहण करता है कोई व्यक्ति, जैसे नारद जी है या अन्य जो साधुगणों का अगर हम लोग आश्रय ग्रहण करते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों ऐसे भक्तों को भगवान अपने बारे में बताते हैं हृदय से, क्योंकि भगवान तो हृदय में ही है। जैसे ध्रुव महाराज को सारा शास्त्रों का निचोड़ पता चल गया, उस तरह से हमें पता चल सकता है। यदि हमें श्री कृष्ण को जानने की समझने की लालसा है, तो हमें भी सब कुछ उनके बारे में पता चल सकता है, उनके दिव्य लीलाओं के रहस्यों को। तो ध्रुव महाराज फिर भगवान की स्तुति करने लगे, तो बहुत विशाल स्तुति है। तो स्तुति करने के पश्चात अब ध्रुव महाराज से भगवान कहते हैं कि ध्रुव मांगो, क्या मांगना चाहते हो। तो ध्रुव कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अगर कुछ चाहिए तो मुझे आपके अकिंचन प्रेमी भक्तों की संगति चाहिए, मुझे आपके हमेशा मैं आपका भक्ति भक्त बना रहा हूँ, और मुझे हमेशा आपके शुद्ध भक्तों की संगति प्राप्त हो। क्यों भक्तों की संगति क्यों चाहिए, क्योंकि भक्तों की संगति में हमेशा आपकी कथाएं होती रहती हैं, तो आपकी भक्तों की संगति में रहूँगा तो हमेशा आपकी याद कर आपकी याद करता रहूँगा। अगर ये पोस्ट पोजिशंस के चक्कर में पड़ गया और संसार के कुछ भोगों को प्राप्त करने के लिए मैं चला गया, तो मुझे आपका विस्मरण होगा, आपके भक्तों के कभी दर्शन भी नहीं होंगे। इसलिए प्रभु मैं जो कुछ मांगने आ रहा था मुझे वो कुछ नहीं चाहिए। लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं समझना चाहिए कि तो लोग में हल्ला हो जाएगा कि बच्चा आ गया और ब्रेन वॉश कर दिया। तो भगवान ने कहा नहीं, जो तुम मांगने आए थे वो तो तुम्हें निश्चित मिलेगा, वो तो निश्चित मिलेगा, लेकिन मेरा कृपा प्रसाद होगा वो। देखिए हमें अंतर समझना चाहिए कि देवता लोग जब देते हैं और भगवान देते हैं, इनमें अंतर क्या है। अंतर ये है कि अगर हमारे माता पिता है और हम माता पिता से कुछ मांगते हैं, तो माता पिता विचार करेंगे कि क्या ये मेरे बेटे के हित के लिए है या नहीं। अगर हित के लिए है तो निश्चित देंगे, उनके अंदर वो क्षमता नहीं होगी देने की तो वो कुछ भी कर लेंगे उसके लिए। यदि आपको उस चीज की आवश्यकता है और आपको वास्तविक उससे आपका हित होने वाला है, तो माता पिता हमारे लिए कुछ भी कर लेंगे, लेकिन वो इच्छित वस्तु आपको लाके दे देंगे। जैसे कि हमें अच्छी शिक्षा देना, अच्छा पढ़ाई के लिए हमें इनकरेज करना, तो कभी कभी माता पिता के लिए संभव नहीं होता कि धन इकट्ठा करें या वो धन प्रोवाइड, लेकिन फिर भी वो प्रयास करते हैं पूरा और अपने बच्चों को पढ़ाते हैं लिखाते हैं सब करते हैं। तो उसी तरह से, लेकिन वही यदि हम किसी बाहर के व्यक्ति को कुछ मांगे तो बाहर का व्यक्ति इतना विचार नहीं करेगा कि इससे इस व्यक्ति का हित होगा या नहीं होगा। जैसे हम लोग किसी अपने अंकल से मांग ले, कुछ मांग ले कि हमें ये चीज चाहिए, तो तुरंत दे देंगे, ये नहीं जानेंगे कि सही इससे इसका हित होगा या नहीं होगा। तो देवता लोग जब देते हैं, पहले तो देवताओं के देने में लिमिटेशंस है, क्योंकि वो देवता लोग जो होते हैं वो अपने आप में एक पोस्ट है, तो उनमें देने की क्षमता कितनी है, थोड़ा लिमिटेड है। लेकिन भगवान जब देते हैं, और जो देवता लोग होते हैं वो लोग विचार नहीं करते क्या मिलने वाला है क्या नहीं मिलने वाला है, मतलब ये। और जितनी भक्ति करेंगे आप देवताओं की, तो जितना भक्ति करते हैं उतना तो कभी नहीं देंगे, उससे थोड़ा ही देंगे। और भगवान कैसे है, थोड़ी सी सेवा करेंगे तो उसको सुमेरु पर्वत जैसा देखते हैं, और आप देवताओं का ऐसा सुमेरु पर्वत जैसा सेवा करेंगे तो वो छोटे से तिल के समान देखेंगे। तो ये डिफरेंस है दोनों में। जैसे आपको एक उदाहरण बता देता हूँ कि देवताओं की स्थिति क्या है, कि एक बार एक श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध में एक भस्मासुर नाम का एक असुर है, भस्मासुर। तो इसका नाम पहले कुछ और था, बाद में भस्मासुर पड़ गया। तो ये शिव जी का बड़ा भक्त था, बड़ा तगड़ा भक्त था। तो हाँ नहीं, मित्रासुर तो अलग है, मित्रासुर चित्र के तुम्हारे अच्छे है, वो मित्रासुर है। तो एक बार ये शिव जी का बड़ा भक्त था, भागवत की सत्य घटना है। तो एक बार ये उसको विचार करा था किसकी भक्ति करूं, भगवान ब्रह्मा की करूं, भगवान विष्णु की करूं या शिव जी की करूं। तो बहुत विचार कर रहा था, तो उसको रास्ते में नारद जी मिल गए। तो नारद जी से पूछा कि नारद जी किसकी भक्ति करूं। तो नारद जी ने सोचा कि इसको तो ब्रह्मा जी के पीछे लगा देंगे तो इसको तो बहुत तपस्या करनी पड़ेगी भैया, वो हिरण्यकश्यप हजारों हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, तो इतना तो इसके पास समय नहीं होगा, भगवान विष्णु के पास नहीं, नहीं भगवान विष्णु के पास इसको भेजना नहीं है, दिक्कत कर देगा। तो किसके, तो शिव जी के पास चला जाए, शिव जी आशुतोष है, बस एक बेलपत्र पानी चढ़ा दे, बेलपत्र चढ़ा दे, एकदम प्रकट हो जाएंगे, आशुतोष है वो। तो वो बोले ठीक है नारद जी, आप बता रहे तो एकदम सत्य होगा एकदम। तो ये शिव जी की भक्ति करने लगा और रोज जल चढ़ा रहा है, सुबह दोपहर शाम चढ़ा रहा है, कुछ हो नहीं रहा है। दूसरा दिन और जल 4-5, 10-15 बार चढ़ा रहा था, कुछ नहीं हो रहा है। तीसरे दिन और कुछ कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो सातवें दिन निर्णय किया कि बस हो गया तमाशा, उसने उठाई तलवार और अपने जो जांग में से मांस निकाल निकाल कर शिव जी के लिंग पर अर्पण करने लगा, निकाल निकाल कर अर्पण करने लगा। उसके बाद भी प्रकट नहीं हुए, बोले अरे नारद जी गलत है क्या, नहीं नहीं नारद जी गलत नहीं हो सकते। उसने अपना सिर काट कर पिंड पर चढ़ा दिया, तब शिव जी प्रकट हो गए, बोले अरे। और शिव जी ने गलती ये कर दी कि शिव जी अपनी वाइफ के साथ आ गए, पार्वती जी के साथ। तो शिव जी प्रकट हो गए और देखने कि ये क्या कर रहा है, मुझे बस बेलपत्र चढ़ा देता, पानी चढ़ा देता, मैं प्रसन्न होते थे, सर भी काटने की क्या आवश्यकता है। तो वो कहे कि बोल क्या 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 चाहता है, क्या मांगता है। तो वो बोला, वो असुर बोला कि वो असुर तो पार्वती जी को देख के लड्डू हो गया, बोले इतनी सुंदर स्त्री इसके साथ क्या कर रही है, ये जोड़ी मैच नहीं होती है, पता नहीं कहा किसने जोड़ी बना दी इसकी, ये इतनी सुंदर और ये राख लगाकर बैठा है, हड्डी सब सांप गले में लटका हुआ, कैसे शादी कर ली इसने इसके साथ। तो मुझे तो ये चाहिए, अब शिवजी का रास्ता कैसे काटो, ये देखिए ये भक्त इनके देवताओं के भक्त, शिवजी का रास्ता कैसे काटो। तो बोल रहे कि मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिसके सर पर हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। तो शिवजी बोले तथास्तु। अब शिवजी ने तथास्तु कर दिया तो ये टेस्ट करने के लिए इनके पीछे भाग रहा है। अब शिवजी भाग रहे भाग रहे भाग रहे भाग रहे सब जगह भाग रहे और भस्मासुर पीछे 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 भाग रहा है और ये दौड़ रहे दौड़ रहे दौड़ रहे भस्मासुर पीछे पीछे सब जगह भाग भागम भाग हो रही है। तो अंततः शिवजी ने भगवान वामन का स्मरण किया, भगवान वामन का स्मरण किया और भगवान का स्मरण करते भगवान तो आ जाता है, भगवान का नाम और भगवान से भगवान अभिन्न है। द्रौपदी ने बुलाया भगवान तुरंत आ गए, अजामिल ने बुलाया भगवान ने अपने दूतों को भेज दिया। तो भगवान शिवजी ने स्मरण कर लिया तो भगवान आ गए वामन के रूप में और बोले ओए एक्सक्यूज मी भस्मासुर जी एक्सक्यूज मी कहाँ भाग रहे हैं आप। बोले शिवजी ने वो शिवजी के पीछे जा रहे हैं, वो उन्होंने वरदान दिया है। क्या शिवजी ने वरदान दिया है? अरे आप जैसा सज्जन पुरुष कहाँ शिवजी के पीछे भाग रहा है? आइए आइए बैठिए बैठिए। तो भगवान वामन उनको बिठा बोले बत्तीस सारी स्टोरी सुनाइए, भाई इन्होंने मुझे वरदान दिया है। अरे जब से दक्ष प्रजापति ने इनको शाप दिया है ना तब से सारा पावर इनका चला गया है और आप कहा नारद जी की बात मानकर इनके पीछे पड़ गए। आप देखिए आप अपना हाथ अपने सर पर रख कर देख लीजिए, ट्राई कर लीजिए रख लीजिए। अरे अरे रख लो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला है। मैं ब्राह्मण हूँ उस पर विश्वास कीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। अरे अरे रख दो सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, ये क्या होने वाला है, रख दो। रख दिया भस्म। एक बार ऐसे ही सारे ऋषियों की सभा छोटी थी, नहीं ये सब भागवत की बात है, मैं सब ये सत्य घटना है, ये सब शास्त्र के शास्त्र संबंध, ये सब भागवत किसने ये जो शास्त्र लिखे हैं वेद व्यास जी ने लिखे हैं, वेद व्यास जी भगवान के होता है, ये हमें विश्वास होना चाहिए शास्त्र पे। आजकल युवा पीढ़ी जो है आज वेस्टर्न ऑथर्स के ग्रंथों को पढ़ पढ़ कर हमारा जो साहित्य है जो हमारा शास्त्र है उस पर से उनका विश्वास उठ गया है। ये तो हमारी संस्कृति है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, उन लोगों के ग्रंथ पढ़ रहे हैं जिनको शास्त्र में विश्वास नहीं है, जिनको भगवान पर विश्वास नहीं है, और उनके ग्रंथ पढ़ पढ़कर उनकी काल्पनिक कहानियां पढ़ पढ़कर हम लोग हमारे जो वास्तविक जो घटनाएं हैं उसको भी हम लोग काल्पनिक मानते हैं। हमारी श्रद्धा नहीं होती शास्त्र में, उसका कारण यह है कि हम लोगों की संगति हम लोगों का जो हम लोग जो एसोसिएशन ले रहे हैं वो ऐसे लोगों का ले रहे हैं जिनको भगवान पर विश्वास नहीं है। हैरी पॉटर को तो मान लेंगे, हैरी पॉटर की कहानियों को मान लेंगे, उसके सारे सब कुछ एक दो बार जितने भी मूवीज निकले सब हाँ सही एकदम, हैरी पॉटर एकदम वेरी नाइस, और श्रीमद् भागवत अरे काल्पनिक है, वो सब स्टोरीज है वो सब। मैं संस्कृत का डिप्लोमा कर रहा हूँ मुंबई यूनिवर्सिटी से और मुझे बड़ी हृदय में पीड़ा होती है जब मैं जब संस्कृत पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं वे बोलते हैं कि ये सब ग्रंथ काल्पनिक है। कितनी पीड़ा होती है, अरे संस्कृत पढ़ा रहे हैं आप लोग, मैं संस्कृत इसलिए पढ़ रहा हूँ कि मुझे शास्त्र पढ़ने हैं इसलिए मैं संस्कृत सीख रहा हूँ अच्छे से, और आप लोग मुझे ये बता रहे हैं कि वो सब काल्पनिक ग्रंथ है, ऋषियों ने ऐसी कल्पना करके लिख दिया है। कितनी पीड़ा होती है, ये सब कुसंग के कारण होता है, कुसंग के कारण। तो ऐसे कुसंग से बचना चाहिए। श्रीमद् भागवत और भगवान में कोई अंतर नहीं है, श्रीमद् भागवत का एक एक श्लोक साक्षात श्री कृष्ण है, ये जो भगवान का नाम है इस भगवान ने, और देखिए हम भगवान ने हमारे लिए क्या क्या नहीं किया है, भगवान नाम के रूप में उपस्थित है, भगवान भागवत के रूप में उपस्थित है, भगवान अर्चा वगैरह के रूप में उपस्थित है, भगवान भक्तों के रूप में उपस्थित है, इस तरह से भगवान हम हमारी सहायता कर रहे हैं ताकि हम लोग श्री कृष्ण उनसे जुड़ जाए, उनसे प्रेम करने लगे। तो ध्रुव महाराज ने मना कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो भगवान ने कहा नहीं तुमने जो मांगा है वो तुम मिलेगा ही मिलेगा, तुम्हें 36,000 वर्षों तक राज्य मिलेगा पूरे भूमंडल का, और उसके बाद तुम आओगे मेरे धाम में वैकुंठ में, और मैंने एक स्पेशल वैकुंठ तुम्हारे लिए बना के रखा है, उस वैकुंठ का नाम होगा ध्रुव लोक। तो जो ध्रुव लोक है वो और कुछ नहीं है, वैकुंठ लोक है। वो जो ध्रुव है ना, ध्रुव तारा, जिस जो ध्रुव लोक बोलते हैं हम लोग, वो ध्रुव मतलब वैकुंठ है, लोकल वैकुंठ है। उसको श्वेतद्वीप भी बोलते हैं, शास्त्र में अलग अलग नाम से जाना जाता है, लेकिन वो ध्रुव लोक है, वैकुंठ लोक है। तो ध्रुव महाराज 36,000 वर्ष तक वहां से तो भगवान अंतर्धान हो गए और ध्रुव अपने घर लौटे। जैसे नारद जी ने कहा था 6 महीने में ध्रुव महाराज घर पर लौटे, उत्तानपाद अपने सारी सारे प्रजा को लेकर, उत्तानपाद ध्रुव जिस रास्ते से आ रहा था उस रास्ते से ध्रुव का स्वागत करने के लिए चल पड़े और ध्रुव का आलिंगन किया और उसको चूमा, उसके सर सूंघ रहे थे और उसको कहा कि, और धन्यवाद दे रहे थे नारद जी को, और अपने अपने आप को गौरवित गौरवित मान रहे थे कि मेरा पुत्र भगवान को प्राप्त कर कर आया है, कितनी बड़ी बात है। माता पिता को बहुत खुशी मिलती है जब उनका पुत्र, उनका पुत्र संत, उनकी जो संतान जिसको उन्होंने इतनी मेहनत करके पढ़ाया लिखाया, टट्टी साफ की जब छोटे थे टट्टी साफ किया, ये किया वो किया, और इतनी उनको खुशी मिलती है जब उनके उनके पुत्र अच्छे रास्ते पर जाते हैं, खुशी मिलती है। और वही अगर पुत्र अगर सिगरेट दारू और ये सब चीज़ में क्लब और ये सब में जाएंगे तो वो अपना जीवन नरक मानते हैं कि इससे अच्छा पैदा ही नहीं करते, उनके हृदय में कोस वो हृदय में दुखी रहते हैं, वो सोचते हैं कि ऐसा तो ऐसा होता तो पैदा ही नहीं होता, अच्छा होता। इतना कष्ट उठाते हैं हमारे माता पिता बचपन में छोटे रहते तब, और हम बड़ा होके भार के भोगों से इतने लुप्त हो जाते हैं कि हम लोग अपने माता पिता तक का सम्मान नहीं करते। तो ऐसी स्थिति में हम लोग हैं, संसार में स्थिति ऐसी है, लेकिन भगवान की भक्ति करेंगे तो जितने सारे सद्गुण है वो सब हमारे अंदर आ जाएंगे। भागवत के बारे में भागवत में कई सारे भक्तों के चरित्र रखे गए हैं, उसको बारंबार पढ़ेंगे तो वो भागवत में जो भक्तों के चरित्र रखे गए उनमें जो भक्त के जो दिव्य गुण है वो हमारे सब हमारे अंदर आ जाएंगे। तो ध्रुव महाराज इतने दिव्य इतने तेजस्वी लग रहे थे कि उनका आलिंगन प्राप्त कर उत्तान बात को बड़ा आनंद हुआ। और फिर कुछ समय के पश्चात उत्तानपाद ने ध्रुव महाराज को राज्य दे दिया। उस समय आयु काफी बड़ी होती थी, एक लाख वर्ष की आयु होती थी, इसलिए उनको 36,000 वर्ष उनको उन्होंने राज्य किया। तो 36,000 वर्ष राज्य करने के जब कर रहे थे उसमें कुछ ऐसी घटनाएं हो गई, जैसे कि एक बार उनके जो उनका जो भाई था सौतेला भाई उत्तम, वो एक बार शिकार करने के लिए गया हुआ था, और कहा गया था शिकार करने के लिए यक्षों के राज्य में, जो कुबेर जी के कुछ यक्ष नाम के एक प्रजा जाति रहती है जो थोड़ी आसुरी टाइप होते हैं, उन शिव जी के गण रहते हैं, शिव जी के सारे गण जो है वो उसी टाइप के असुरी रहते हैं, असुर राक्षस सब ऐसे ही रहते हैं। तो उत्तम उनके हाथों से मारा गया, तो ध्रुव महाराज को इतना क्रोध आया तो ध्रुव महाराज अकेले ही सारी यक्षों की सेना से लड़ने के लिए निकल पड़े। ध्रुव महाराज अपने रथ को अपने सारथी को लिया और निकल पड़े और जाते वहां पर शंखनाद कर दिया, और शंखनाद करके सारे यक्षों को जो हजारों लाखों की संख्या में थे, उन सारे हजारों लाखों की संख्या में जो यक्ष थे उनको अकेले ध्रुव महाराज ने ललकार दिया। ये भगवान के भक्त की क्षमता है भाई, साधारण थोड़ी भगवान के चरण को हम लोग को प्राप्त करें तो सारी दिव्य शक्ति आ जाती है। एक अकेला ध्रुव और इतने हजारों लाखों यक्ष, उन दोनों में उन लोगों में युद्ध छिड़ गया तो ध्रुव महाराज ने तो उनके हजारों हजारों बाणों का प्रत्युत्तर उन्होंने देना चालू कर दिया और धड़ाधड़ एक यक्षों को गिराना चालू कर दिया। उनको क्रोध आया कि मेरे भाई उत्तम कैसे मारा, क्यों मारा इन लोगों ने, क्या अपराध था उसका, तो मारना चालू कर दिया सबको। तो युद्ध में तो ऊपर नीचे होता रहता है, तो एक समय आ गया जब ये यक्ष लोग ध्रुव पर भारी पड़ गए और ऐसा लग रहा था कि ध्रुव नाम का जो सूरज है वो वो अभी अस्त हो जाएगा अर्थात ध्रुव हार जाएंगे। तो सारे जो साधु लोग थे, जो साधु लोग सब थे, उनमें एक ऐसे कि ध्रुव नहीं हारना चाहिए, भगवान का भक्त नहीं हारना चाहिए। तो वे आते ध्रुव महाराज के पास युद्ध स्थल में और आते और ध्रुव से ध्रुव को उपदेश करते हैं कि ध्रुव नारायण अस्त्र का इस्तेमाल करो, नारायण अस्त्र का प्रयोग करो और हमें तुम्हारा हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं, हमारा आशीर्वाद तेरे साथ है कि तुम्हारी विजय निश्चित होगी। तो ध्रुव, ये मैं बहुत संक्षिप्त में आप लोगों को बता रहा हूँ, ये बहुत विस्तार से 7-8 अध्यायों में ये सब है। तो ध्रुव उनकी बात मानते हुए नारायण अस्त्र अपने धनुष पर रखता है और बस रखने की देर थी, चलाया भी नहीं था उन्होंने कि सारी जो माया उनके द्वारा रची गई थी सब खत्म हो गई। और ऐसा लग रहा था कि ध्रुव अकेले सारी जो यक्ष जाति है उसको खत्म कर देंगे। लेकिन उसी समय वहां पर मनु महाराज आते हैं। मनु महाराज आकर ध्रुव को समझाते हैं। और मनु महाराज कौन है? उत्तानपाद के पिताजी, तो इनके दादा हो गए। वो आकर समझाते हैं कि ये जो युद्ध है इसको रोक दो, ये हम लोग सभ्य कार्य नहीं है। तुम्हारा एक भाई मरा ना, तुमने इतने सारे यक्षों क्यों मार दिए और अभी तुम मारते जा रहे हो कि ये भक्तों का लक्षण है? तो ठीक है, उन्होंने युद्ध रोक दिया। तो उन्होंने मनु महाराज ने कहा कि जानते हैं सब कुबेर जी के साथी है, कुबेर जी भगवान शिव के मित्र है, भक्त है उनके, क्या सोचेंगे वे कि भगवान हरि के भक्त में ये उन्मत्ता। उन्होंने ध्रुव महाराज ने युद्ध को रोक दिया। फिर आए कुबेर जी, आए साक्षात, और कुबेर जी ने कहा कि बेटा ध्रुव बहुत बहुत धन्यवाद। किस बात का कुबेर जी? कि तुमने अपने मनु महाराज की बात मानकर मेरे गणों को छोड़ दिया। तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, मुझे देना चाहता है, मैंने आपके गणों को मारा है। अरे बेटा, तुमने 5 साल की उम्र में तुमने भगवान को प्राप्त कर लिया, तुम्हारे जैसे प्रेमी भक्त को तुम हमें देना चाहिए। तुमने किसी को नहीं मारा, वो तो जिनको मरना था वो मर गए। तो तुम्हें मैं कुछ दिन क्या देना चाहते हैं? ध्रुव महाराज मांगो कुछ। तो ध्रुव महाराज बोले कि मुझे ऐसी कृपा कीजिए मुझ पर कि मुझे एक क्षण के लिए भी भगवान की कभी विस्मृति ना हो, कभी मैं भगवान को एक क्षण के लिए भी ना छोड़ू। तो कुबेर जी ने ध्रुव महाराज को आशीर्वाद देकर कुबेर जी वहां से अप्रकट हो गए। तो वहां पर फिर ध्रुव महाराज ने अपना स्वच्छंद 36,000 वर्ष तक राज्य किया। और उसके बाद एक समय आया जब ध्रुव महाराज ने अब विचार किया कि अब मुझे अपना सब कुछ छोड़कर भगवान के धाम में जाना चाहिए मुझे। तो उन्होंने अपने बेटे उत्कल को राज्य देकर ध्रुव महाराज वन में चले गए भगवान को प्राप्त करने के लिए। प्राप्त तो कर ही लिया था लेकिन फिर भी अब भगवान के धाम जाना चाहते थे। तो वे जंगल में जाते हैं और जंगल में जाकर साधुओं की संगति में भगवान के कथाओं को सुनते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं और इस तरह से अपना समय व्यतीत करते हैं। देखिए, हमारे जीवन में भी भक्तों की संगति हमें बहुत आवश्यक है। आपको भक्तों की संगति कैसी, आपको उदाहरण देता हूँ, उससे आपको समझ में आ जाए कि भक्तों की संगति का क्या असर होता है जीवन में। आपने ट्रेन तो देखी होगी जो दिल्ली मुंबई जाती रहती है, जो ट्रेन होती है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब ट्रेन को जाना होता है ना तो कभी कभी रास्ते चेंज करने पड़ते हैं। मतलब ट्रेन इस तरफ जाना है लेकिन अभी ऐसे जाना है, इस तरह जाना होता है। तो इंजन के डब्बे को निकाल कर उसको पीछे की तरफ जोड़ा जाता है और फिर दिशा चेंज हो जाती है ना, ऐसे जाना होता है। लेकिन डायरेक्शन थोड़ा चेंज करना होता है, एंगल चेंज, तो इंजन को डब्बा निकाला जाता है और फिर से यहाँ जोड़ा जाता है और फिर वो ट्रेन उस दिशा में जाती है। तो उसके लिए ये कार्य करने के लिए जंक्शन चाहिए। वो डिब्बा आता है ट्रैक आगे से, ट्रैक पे आता है, फिर उसको लगा दिया जाता है, जंक्शन पे कार्य होता है। उसी तरह से भक्तों की संगति ये जंक्शन है, कैसा जंक्शन है? कुमारक से सन्मार्ग की तरफ, दुसंग से सत्संग की तरफ, और अधम अधम और जितने तुच्छ जो जीवन है हमारा उससे उत्कर्ष जीवन की तरफ जाने का एक जंक्शन है भक्तों की संगति। कि भक्तों की संगति में क्या होता है? भगवान की चर्चा होती है, और भगवान की चर्चा करने से क्या होगा? उनमें प्रेम बढ़ेगा, उनके साथ संबंध, भगवान कौन है ये जान लेंगे हम लोग, उनके साथ हमारा संबंध जुड़ेगा, उनमें हमारी आसक्ति हो जाएगी, और जब हमारी आसक्ति हो जाएगी तब ये जो संसार जन्म मृत्यु का चक्कर है वो खत्म हो जाएगा, हम उनके भगवान के धाम जाने में समर्थ हो जाएंगे। लेकिन तो साधु संग या भक्तों की संगति वो एक जंक्शन के जैसे है जहाँ पर हमारी जो ट्रेन जो इंद्रिय विषयों की तरफ जा रही है, नरक की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि विषय को भोगते रहेंगे संसार के, तो दो चीजें होंगी, एक तो 84 लाख मिलेगी या नरक चले जाएंगे। हो सकता है गलती से किसी को मनुष्य शरीर मिल भी जाए, लेकिन अधिकतर चांसेस तो ये होते कि वो 84 लाख योनि में घूमे या नरक में चला जाए। तो भक्तों की संगति में आने से हमारा सारा सिस्टम चेंज हो जाएगा, जितने सारे भक्तों के जो दिव्य गुण है वो हमारे अंदर आ जाएंगे, उनकी संगति से हमारे सारे बुरी आदतें अपने आप छूट जाएगी, छोड़नी नहीं पड़ेंगी, अपने आप छूट जाएंगी। देख देख के भक्तों की संगति में रह रह के जितने सारे बुरी आदतें हमारे अपने आप छूटने का, अच्छे अच्छे गुण हमारे अंदर उदित हो आते रहेंगे। तो भक्तों की संगति वो जंक्शन है जहाँ पर हम अपना जीवन परिवर्तन कर सकते हैं। तो इसलिए ध्रुव महाराज ने भगवान को प्राप्त करने के बाद भी वन में जाते हैं और साधुओं की संगति में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, भगवान कथाओं को सुनते हैं, नाम जप करते हैं। और एक दिन ऐसा आता है कि ध्रुव महाराज को लेने के लिए भगवान के धाम से विमान आता है, और उसमें नंद और सुनंद नाम के भगवान के दो परिकर ध्रुव महाराज को दिखते हैं। ध्रुव महाराज तुरंत खड़े हो जाते हैं और उनको दंडवत प्रणाम करके उनका स्वागत करते हैं, और ध्रुव महाराज से नंद सुनंद कहते हैं कि हे ध्रुव महाराज, आपने तो 5 वर्षीय आयु में ही भगवान को प्राप्त कर लिया था, अब हमें भगवान ने हमें भेजा है आपको वैकुंठ धाम ले जाने के लिए। आपने जो मांगा था ना कि हमें वो ऐसा पद चाहिए जो ब्रह्मा जी के पास भी नहीं है, जी हाँ, भगवान ने अपने धाम निज धाम वैकुंठ को आपका नाम ध्रुव लोग दे दिया है, तो आप कृपा करके चलिए। तो ध्रुव महाराज ने वहां के उपस्थित साधुओं को प्रणाम किया, उनकी प्रदक्षिणा की, बाद में नंद सुनंद को दोबारा प्रणाम करके उसकी परिक्रमा की, विमान की परिक्रमा की, और जब चढ़ने वाले थे उस समय ये जो आज सभी का जो श्लोक हमने याद किया, मृत्यु साक्षात मृत्यु काल आ गया उसके सामने। तो ध्रुव महाराज ने मृत्यु के सर पर पैर रखकर ध्रुव महाराज विमान पर चढ़ गए, और ध्रुव महाराज विमान उड़ी रहा था कि ध्रुव महाराज को याद आ गया, अरे मेरी माँ सुनी थी जिसकी वजह से आज मुझे दिन देखने मिला, वास्तव में सुनी थी तो उसकी नारद जी से पहले भी प्रेरणा देने वाली उसकी माँ थी, अगर उसकी माँ ने नहीं कहा था कि जा वन में तो ध्रुव तो निकलते नहीं थे, तो वो बिना उसके में कैसे वैकुंठ जाऊं। तो नंद सुनंद आदि ने ध्रुव जी को बताया, ध्रुव वो देखो तुमसे भी आगे तुम्हारी माँ दूसरे विमान में भगवान के धाम जा रही है। तो ध्रुव परम आनंद के साथ इस भौतिक संसार को बाय बाय कर दिए और अपने भगवान के धाम चले गए। रास्ते में जा रहे तो सारे, जब जीव वैकुंठ जाता है भगवान के धाम जाता है तो सारे देवता लोग विमानों में बैठकर उस जो जीव जाता है भगवान के धाम में उसको स्वागत करते हैं, क्योंकि जो विमान है भगवान का वो सारे लोगों से होकर गुजरता है, ताकि जो उन देवताओं को भी पता चले कि भगवान का जीव वैकुंठ भगवान के धाम जा रहा है, तो सारे देवता लोग प्रसन्न चित्त होकर उसको आशीर्वाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, उस पर फूलों की वर्षा करते हैं और अलग अलग प्रकार के बाजे बजाते हैं खुशी के मारे कि जीव भगवान के धाम में जा रहा है। तो इस तरह से हमें भी ये जीवन का ध्येय रखना चाहिए कि हमें भी ध्रुव महाराज जैसे श्री कृष्णों के चरण कमलों को प्राप्ति करनी है। तो सबसे उत्तम कार्य क्या है, भगवान ने क्या उपाय दिया है, श्रवण कीर्तन जल करय सेचन। श्रवण और कीर्तन के माध्यम से हमें धीरे भगवान के गुणों को सुनते रहने से और पढ़ना चाहिए, शास्त्रों को पढ़ना चाहिए और भक्तों की संगति में धीरे धीरे करके हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, हमारे जो हृदय की जो मलिनता है वो दूर होती जाएगी और भगवान श्री कृष्ण के साथ हमारा संबंध जुड़ जाएगा और ये शरीर छूटने के बाद हम लोग भी भगवान के धाम निश्चित जा सकते हैं। करना कुछ नहीं है, बस ये जो कार्य कर रहे हैं, 16 माला जप करना, भक्तों की संगति में आना और भगवान के गुरुओं को सुनना, ये कार्य करते रहना चाहिए अंतिम दिन तक। बस फिर ध्रुव महाराज जैसे ध्रुव महाराज को भगवान के धाम से विमान आया, हम लोगों को भी आएगा। तो धन्यवाद, हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। जिनमें दृढ़ विश्वास है, जिनका प्रश्न ये है कि हमारे जीवन में भी संकट आते हैं तो उस समय हमारा मनोबल गिर जाता है, तब क्या करना चाहिए, सही? तो जिनका मनोबल नहीं गिरता है और जो हमेशा दृढ़ रहते हैं, ऐसे भक्तों की संगति में आना चाहिए। ऐसे भक्तों की संगति में रहेंगे कि जो हर स्थिति में दृढ़ है, तो आप में वो दृढ़ता आ जाएगी। तो संगति, हमें अच्छी संगति, अच्छे भक्तों की संगति में रहना चाहिए जिनमें दृढ़ विश्वास हो, ऐसे भक्तों की संगति में रहना चाहिए। तो हमें उनसे, उनके जीवन को देखकर हम सीख सकते हैं, क्योंकि हर एक के जीवन में तो उतार चढ़ाव आते हैं, तो हम नहीं देखेंगे उनके जीवन में भी आया तो वो कैसे लड़े हैं, किसी स्थिति में भी तो जो दृढ़ रहते हैं भक्त, वो किसी भी स्थिति में भगवान के चरण कमलों को नहीं छोड़ते। और किसी को भी प्रश्न? अगर भक्तों की संगति से बाहर जाए तो भक्तों द्वारा बताए गए आदेशों का पालन करना चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी ने बताया कि 16 माला जप करना, 4 नियमों का पालन करना, ये कहीं भी रहे, देशांतर हो जाए, वेशांतर हो जाए, कार्यांतर नहीं होना चाहिए, स्थानांतर हो जाए। अब यहाँ, अभी आप यहाँ पर है, कल US में होंगे, कोई UK में होगा, कहीं कहाँ होगा, लेकिन कार्यांतर नहीं होना चाहिए। कृष्ण को जीवन से निकालना नहीं है, फिर वो चाहे कहीं भी हो, इंडिया में हो, UK में हो, US में हो, शायद आप लोग में से यहाँ से बहुत से लोग बाहर चले जा सकते हैं, तो वहाँ पर भी जाकर भक्तों की संगति ढूंढनी है, वहाँ पर भी अपने अपने इस कृष्ण भावना भावित जीवन को छोड़ना नहीं है, कि बड़ी मुश्किल से भगवान पर विश्वास बैठता है, बड़ी मुश्किल से संगत मिलती है, ऐसी संगत मिलती है। आपको एक राज की बात बताऊं, 84 लाख योनि घूमने के बाद हमें मनुष्य शरीर मिला है, सही? तो 84 लाख योनि घूमने के लिए 125 करोड़ वर्ष लगते हैं। कैन यू इमेजिन, 84 लाख योनि है, 84 लाख, 84 लाख, तो हर एक योनि में थोड़ा टाइम तो बिताना पड़ता है। वो कैलकुलेट करेंगे तो 125 करोड़ वर्ष के बाद हमें यह दुर्लभ मनुष्य शरीर मिलता है। हरी हरी विफले जन्म वो आयनु, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिए सुनिया विष खाइनु। लेकिन ये मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद, भक्तों की संगति मिलने के बाद भी यदि हम उस संसार का विष पीने लगेंगे, जानिए सुनिए विष खाइनु, तब तो क्या बताएंगे, तो हमारा जन्म जो है विफल हो गया। हरी हरी विफल जन्म वो आयनु, नरोत्तम दास ठाकुर लिखते हैं, तो हमारा जीवन विफल हो जाएगा। देशांतर हो जाए, वेशांतर हो जाए, कोई ब्रह्मचारी हो जाए, कोई गृहस्थ हो जाए, लेकिन कार्यांतर नहीं होना चाहिए। हर कार्य में, जीवन के हर समय में श्री कृष्ण को बीच में रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अगर जहां पर ऐसा लग रहा है कि अभी श्री कृष्ण अगर ये कार्य करने से हमारा भक्ति छूट जाएगी तो कार्य को छोड़ दो, और जो जिससे कि हम अपना कृष्णा कॉन्शियस लाइफ प्रैक्टिस कर सके उसी विश्वास कीजिए। आपको भगवान सब वो सब कुछ देंगे। जब आप इस तरह से भगवान की तरफ, भगवान के लिए जब कुछ त्याग करेंगे तो भगवान नोट करते हैं और आपकी इच्छा को देखते हैं। अच्छा ये मेरी इसकी इच्छा ये थी, हाँ तो भगवान आपको वो देंगे। अगर मान लीजिए आपने कृष्ण भावना भावे जीवन के लिए एक नौकरी छोड़ दी जिसमें भक्तों की संगति नहीं समय मिल पा रहा, छोड़ दिया आपने, लेकिन वहां पर पे ज्यादा था, भगवान उसको उससे ज्यादा पे आपको देंगे। अरे अंत तक श्री कृष्ण के हाथ में ही सब कुछ है ना। अरे वो अपने भक्तों को नहीं देंगे तो क्या ऐसे वैसे को दे देते हैं? जो उनकी भक्ति नहीं करते उनको दे देते हैं, तो जो उनका भजन करे उनको नहीं देंगे? निश्चित देंगे। लेकिन हमें एक जीवन में निर्णय लेना पड़ेगा, क्या कि हमें कृष्ण के चरण कमलों को किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ना है। ये जब निर्णय लेंगे हम लोग ना, तब आएगा मजा। तो भगवान तो जो जो इच्छा भगवान सब देंगे। ध्रुव महाराज को कैसे दिया? अपने चरण कमल तो देंगे ही देंगे, उसके साथ साथ भगवान हमारे हर जीवन के हर समय में हमारे साथ देंगे। किसी भी विकट स्थिति में हो कोई आपका कुछ उखाड़ नहीं सकता। इतना इतना ध्यान रखिए, संसार में पद पद विपद है, लेकिन हम लोग यदि कृष्ण के चरण कमलों को पकड़ के रहेंगे तो हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। भगवान हमारे रक्षा करते हैं। तो यदि हम लोग भक्तों की संगत में किसी कारण से नहीं है तो भक्तों द्वारा दिए गए आदेश का तो पालन करना ही चाहिए। 16 माला जप करना, 4 नियमों का पालन करना, संगति में नहीं तो लेक्चर सुनो, MP3 से लेक्चर सुनो, ये और भी कई इतने सारे माध्यम है कथा सुनने के, संगति में रहने से उसका इस्तेमाल वो कर सकते हैं।
जब आत्मा शरीर को छोड़ देती है फिर भी परमात्मा कुछ शरीर में कंटिन्यू रहती है।
मैंने कहा कि जब जीव शरीर, जीव जब जीवात्मा जब शरीर में आता है माँ के गोद में, पहले भगवान आता है उसके बाद जीवात्मा आता है, और जब शरीर छोड़ने के समय पहले जीवात्मा शरीर छोड़ता है उसके बाद भगवान छोड़ता है।
कुछ टाइम के लिए क्या आत्मा से निकल जाते हैं?
नहीं,
परमात्मा तो कंटिन्यू रहते हैं आत्मा के
अंदर। भगवान हमेशा जीव के साथ है।
आत्मा से
छोड़ने के बाद, शरीर छोड़ने के बाद मतलब मृत्यु के समय जब शरीर परिवर्तन होता है तब की बात कर रहा हूँ। एक शरीर जीवात्मा को छोड़ना पड़ता है ना, बुढ़ापा हो जाएगा तो ये शरीर छूट जाएगा, उसके बाद उसको दूसरा शरीर, तो ये शरीर तो छोड़ना पड़ेगा ना। तो ये शरीर छोड़ते समय जीवात्मा पहले शरीर से बाहर आता है, उसके बाद भगवान वो स्थान को छोड़ देता है। और जब दूसरे शरीर में प्रवेश करता है तो पहले भगवान पहले से पहुंचा रहते हैं वहाँ पर और अपने जीवात्मा का स्वागत करते हुए, उसके बाद जीवात्मा आता है। तो ये है वास्तविक मित्रता। ये बताने के लिए मैं आपको ये उदाहरण दिया था कि ये मित्रता है। A friend in need is a friend indeed. तो वास्तविक हित हमारा भगवान करता है। पूछिए बोलो।
जंगल में भगवान की प्राप्ति करने के लिए बोले थे, तो आजकल की माता पिता तो नहीं करते, माता पिता बोलते हमारी भरण पोषण करो, तो कैसे लेते हैं?
तो माता पिता का भरण पोषण भी करना चाहिए। लेकिन देखिए, अब अगर हम लोग कृष्ण से भक्ति करने के लिए मना कर रहे हैं तो वो बात उनकी माननी नहीं है, अन्यथा बाकी सब बात उनकी मानी जा सकती है। जैसे अगर वो कह रहे हैं कि मांस खाओ, मच्छर मटन खाओ, वो तो नहीं खाना है। लेकिन जहाँ तक उनकी सेवा की बात है, उनका ध्यान रखने की बात है, तो वो तो करना ही करना है। कृष्ण को प्राप्त करने में, कृष्ण भावना के बारे में यदि उनको जानकारी नहीं है तब तो वो उस कैटेगरी में उनको नहीं बैठा, तो उनकी उस मामले में बात नहीं माननी है। लेकिन अन्य चीज़ों में जैसे उनका स्वास्थ्य खराब हो जाए या उनको कुछ आवश्यकता, उनकी सेवा करना, उनको कुछ चाहिए, तो ये तो करना ही चाहिए। उससे उससे नहीं भागना चाहिए। वो गलत है। अरे जिस ये जो शरीर कृष्ण के सेवा में लगा हुआ है किसका दिया हुआ है? माता पिता का दिया हुआ है ना। अब उनका अभी आप इतने बड़े हो गए कि आप उनका तिरस्कार करने लगेंगे? नहीं। तो हमारा कर्तव्य है कि कृष्ण भावना भावित रहते हुए हमें अपने माता पिता का भी ध्यान रखना है, लेकिन यदि वे कृष्ण भक्ति में बाधा बनते हैं या उनके इंस्ट्रक्शंस कृष्ण भक्ति से हमें दूर ले जाएंगे तो वो हम उनकी बातों को नहीं मानते। ग्रेजुअली क्या होगा, वो भी मान जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे लोग माता पिता आते हैं, माता पिता मंदिर आते हैं, क्या आप लोग ऐसा हमारे बच्चे को ये करते हैं वो करते हैं, क्या तो सब छोड़ो, ये छोड़ो वो छोड़ो, हमारा बेटा बिगड़ गया है। हमारा बेटा बिगड़ गया है एकदम। और थोड़े दिन के बाद देखना, दो तीन साल के बाद वही माता पिता तिलक बिलक मार के मंदिर आ जाएंगे। ऐसा देखा गया है कि जो लोग विरोध करते हैं बाद में धीरे धीरे बच्चे भी ऐसे जिद्दी रहते हैं ना, तो वो भी नहीं छोड़ते भक्ति को। तो क्या हो जाता है, तो घर वाले धीरे धीरे उनको अपने बेटे के अच्छे गुण पता चलते हैं कि मेरा बेटा सिगरेट नहीं पीता, मेरा बेटा दारू नहीं पीता, बाजू वाले का पीता है मेरा नहीं पीता। वो जब देखते दूसरों को जब देखेंगे कि वो सिगरेट दारू और क्लब इत्यादि में डूबे रहते हैं तो उनको हरे कृष्ण वाले बच्चे अपने बच्चा चल मेरा बेटा कितना अच्छा है। शुरुआत में मेरे घर पे भी सब ऐसे ही हुआ था, मैं आप लोगों से भी मैं भी आई एम से आया हूँ तो मेरे घर की समस्या कुछ डिफरेंट नहीं थी। प्याज लहसुन बंद करने के लिए तो पिताजी से बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था। प्याज जैसे घर पे आता था मैं उठा के कचरे के डब्बे में डाल देता था। तो मान नहीं रहे थे तो एक बार मैंने उनको भारी लॉक कर दिया, मतलब तो भारी रहो, अगर आप प्याज लाए तो भारी रहो। तब तो मान गया आखिरकार, तब से लेके आज तक घर में प्याज नहीं आया है। भगवान की कृपा से 13 साल हो गए। तो शुरुआत में डिफिकल्टी होती है लेकिन मान जाता है। वे लोग भले चैंटिंग नहीं करते हो, मेरे माता पिता भले चैंटिंग नहीं, लेकिन वो भक्त है, मुझसे भी अच्छे भक्त है। क्यों? कि वो लोग मुझे आगे जाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो स्वाभाविक है वो भक्त है ही ना। जो भक्तों की सहायता कर रहा है तो भगवान की कृपा उन पर भी है। तो हमें अपने माता पिता से घृणा नहीं करनी है ना, ये हम लोगों का सिद्धांत नहीं है। प्रेम करना है उनसे, उन्हें दिखाना है आचरण के अपने आचरण से उनको दिखाना है। शुरुआत में विरोध करेंगे, करने दीजिए विरोध, सहन कर लीजिए, मजा आएगा। और थोड़े समय के बाद भगवान से प्रार्थना कीजिए उनके लिए, उनका चित्त परिवर्तन हो जाए, उनका चित्त परिवर्तन हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। माता पिता का आशीर्वाद लेके ब्रह्मचर्य आश्रम में आना चाहिए तो भगवान को प्राप्त करने के लिए गया, ब्रह्मचर्य आश्रम ज्वाइन किया ना, तो माता पिता के आशीर्वाद लेकर आना चाहिए तो कोई बाधा नहीं आएगी भगवत प्राप्ति में। उनको मनाना चाहिए, समझाना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेके ध्रुव महाराज का उदाहरण समझा के ज्वाइन करना चाहिए। हाँ भक्त बनने के लिए मना तो नहीं करते ना, भक्ति करना इम्पोर्टेंट है, भक्ति करना आवश्यक है। और किसी का प्रश्न कोई पूछिए। तो जी क्या जी, पहले तो हमें समझना चाहिए कि भक्त, मैं अब सुबह जो कथा चल रही पूतना उद्धार, अब कल आना चाहिए तो आ सकते हैं सुबह। तो पूतना उद्धार में वही है कि पूतना जैसी राक्षसी, पूतना एक राक्षसी थी, क्या करती थी वो, उसका खान पान क्या था, वो बच्चों का मांस खाती थी, पीती क्या थी, रक्त पीती थी। उसकी संगति क्या थी, वो असुरी असुरी संगति थी। जन्म का हुआ था उसका असुरों में हुआ था, तो उसका सब कुछ बेकार था, कोई होप्स ही नहीं थे उसमें। वो पूतना भक्त बनने का ड्रामा की, क्या किया उसने, सुंदर स्त्री का वेश धारण किया और माँ यशोदा का जो ड्रेस है वो वेश बनाकर श्री कृष्ण को जहर पिलाने के लिए आई, दूध के बहाने जहर पिलाने के लिए आई। लेकिन भगवान ने उसके उस अवगुण को नहीं देखा। भगवान ने क्या देखा, मेरे पास आई है ना, एक तो वृंदावन आई, एक तो ब्रजमंडल में आई है, पहली बात खुशी की बात। दूसरी माँ का वेश बनाकर आई है और वो भी मुझे दूध पिलाने के बहाने से आई है, तब आए गए तो उसको माँ बना ही लेता हूं। तो जब भगवान पूतना जैसी राक्षसी में, जो जिसका खान पान सब बिगड़ा हुआ है, उसमें दोष नहीं देखती, उसमें दोष नहीं देखती, भगवान नहीं देखते, तो इसका अर्थ है कि जो दूसरे जो भक्त है जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं उनमें उनको उनके उनके दोष को तो निश्चित भगवान नहीं देखते, तो हम क्यों देखें। जो भगवान जिनकी भक्ति कर रहे हैं वो भगवान नहीं देखते उनके दोषों को, तो हम क्यों देखेंगे। भगवान तो क्या देखते हैं, गुण देखते हैं कि अरे मुझे प्रणाम कर रहा है, मेरा सोलह माला जप कर रहा है, मेरी भजन कर रहा है, तो भगवान वो देखते हैं। और जो दोष है वो तो धीरे धीरे करके निकल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो भक्तों का सबसे बड़ा गुण है कि वो भगवान को समर्पित है, श्री कृष्ण को उन्होंने अपना जीवन दे दिया है, तो ऐसे भक्तों में दोष नहीं देखना चाहिए। यदि उनमें दोष दिखते भी है तो नहीं, उनके गुणों को देखना चाहिए, अवगुणों दोष को नहीं। उनके गुण क्या है हमें विचार करना चाहिए, इस भक्त का गुण क्या है। अगर किसी में दोष दिखता है तो उसका गुण देखना चाहिए, क्या गुण है इसमें। चलो ये सोलह माला जप कर रहा है, भगवान को प्रणाम कर रहा है, मंदिर आता है प्रणाम करता है, और कंठी माला धारण करता है, सब नियम चार नियमों का पालन करता है, बस। तो ऐसे लोग भक्त में अगर उसके स्वभाव के कारण जो उसमें पुराने पुराने संस्कार पड़े हैं, ऐसे संस्कार के कारण उसमें उसमें कोई त्रुटियाँ है, तो त्रुटियाँ धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, भगवान का नाम जप करके भक्ति करके आगे के ठीक हो जाएगी। तो उसमें उसको दोष नहीं देखना चाहिए, अगर कुछ करना है तो उसके लिए प्रार्थना कर सकता है, लेकिन उसमें दोष नहीं देखना चाहिए। उसमें कोई दोष है ही नहीं, उसने भगवान कृष्ण को अपना जीवन समर्पित किया है, उसमें क्या दोष होगा, है कि नहीं। और कुछ और कोई प्रश्न, ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद।